मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज वेडनेसडे है। पिछले वेडनेसडे को तो गजेटेड हॉलीडे होने की वजह से हम लोग एग्जामिनेशन की तैयारी के बारे में कोई बात नहीं कर पाए थे, लेकिन आज हम इस विषय पर बात करेंगे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपके जितने भी टॉपिक्स होते हैं या जिसे आप कह लीजिए कि अध्याय होते हैं, उनमें से कैसे आप वर्गीकृत करके अपने लिए ज़्यादा फायदे का स्वरूप निर्धारित कर सकेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप सबसे दो समाचारों के बारे में चर्चा करना चाहूँगा, और ये दोनों कहीं न कहीं इम्पॉर्टेंट हैं। मेरी समझ से आप शायद समझ गए होंगे कि मैं किन समाचारों के बारे में बात कर रहा हूँ। कम से कम एक समाचार के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे। यह एक इत्तफाक है, एक अद्भुत संयोग है कि हम लोगों ने ठीक इससे पहले ये चर्चा की थी कि जो रामप्पा टेम्पल है तेलंगाना का, उसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। वो हमारा 39th स्थल था। और आप देखिए कि उसी क्रम में अब हमारे पास फिर से एक विश्व विरासत स्थल आ गया है, और वह है गुजरात का धौलावीरा। मेरी समझ से अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है या आपने इससे पहले हिस्ट्री पढ़ी हो तो धौलावीरा शब्द आपको नया नहीं लगा होगा। यह दोस्तों विश्व विरासत स्थल में शामिल हो गया है, और इस तरीके से अब कुल हमारे पास 40 विश्व विरासत स्थल हो गए हैं। मुझे लगता है कि चूंकि कला साहित्य संस्कृति बकायदे आपके सिलेबस में है, तो इस पर आपको एक छोटा सा नोट तैयार कर लेना चाहिए। ये जो धौलावीरा है, जो खासकर हमारे उस समय के जो 8 जो प्रमुख स्थल हैं, नगर हैं आप कह लीजिए, उनमें से एक नगर है। मैं नगर की बात कर रहा हूँ, उनमें से एक नगर है। ये नगर कौन कौन से हैं याद करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने जनरल स्टडीज़ के तहत भी इसे पढ़ा है तो कुछ नगर तो आपको याद होंगे। हड़प्पा याद होगा, मोहनजोदड़ो याद होगा, कालीबंगा याद होगा, राखीगढ़ में 1.5-2 साल पहले काफ़ी खुदाई हुई थी और काफ़ी नई चीज़ें मिली थी जिनके बारे में मैंने विस्तार से आपसे बात की थी, तो राखीगढ़ है। लोथल जरूर आप जानते होंगे, कायदे रूपनगर है, गवेरी वाला है, ये सब हमारे नगर रहे हैं। उसी में है एक नगर धौलावीरा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो धौलावीरा नाम है, जहाँ ये अभी है उसके पास में एक गांव भी धौलावीरा है, तो कहा जाता है कि इसने अपना नाम वहाँ से लिया है। और ये गुजरात के रण के कच्छ में है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये माना जाता है कि इसका जो अस्तित्व है लगभग 1500 BC तक रहा, बिफोर क्राइस्ट तक रहा, यानी कि 3500 साल पहले तक यह जो नगर है यह अस्तित्व में था। इसकी जो खोज हुई है, मतलब कह लीजिए कि 1960 से 70 के बीच में है। मैंने 2-3 जगह देखा तो अलग अलग सन मिल रहे हैं, तो आप सन को बिल्कुल हटा दें। और इसका जो एक्सकवेशन है, यानी कि इसकी जो खुदाई करने का श्रेय है, कभी कभी प्री एग्जामिनेशन में इस तरह का पूछा जा सकता है, वह जगतपति जोशी को है, जो बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बकायदे डायरेक्टर जनरल भी बने। जगतपति जोशी, किसी किसी अखबार में J.P. जोशी लिखा हुआ है। और ये उस समय आप यूं कह लीजिए कि उस सभ्यता और संस्कृति का एक बहुत बड़ा नगरीय केंद्र था, अर्बन सेंटर था। और ये जो क्षेत्र है, काफ़ी जो खुदाई हुई है, जो 5 बड़े बड़े क्षेत्र हैं उनमें से एक है, और लगभग 22 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। 22 में आप 2.5 का गुणा कर दीजिए तो बकायदे उतना एकड़ निकल जाएगा। ये काम में आप पर छोड़ता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। एक याचिका दायर की गई थी और उसमें एक मांग की गई थी कि जो सार्वजनिक स्थलों पर भीख मांगा जाता है तो इन पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, उन पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। और बकायदे उसने अपनी तरफ से ये बात कही है, मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है और भारत को चाहिए कि वो इनके लिए व्यवस्था करे, क्योंकि ये जो भीख मांगने को बाध्य हो रहे हैं इसके पीछे कारण है। हमारे संविधान में बकायदे इनकी व्यवस्था करने के लिए फंडामेंटल राइट्स हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट्स में जीवन का अधिकार है, और आप देखिए कि कैसे जीवन के अधिकार की व्याख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। इसी के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून भी लाया गया है, क्योंकि जब आप और हम जब अपने ही नागरिकों को अनाज नहीं उपलब्ध करा सकेंगे तो फिर कैसे उनके जीवन के अधिकार की रक्षा करेंगे। तो सीधी सी बात है कि राज्यों को चाहिए कि जो लोक कल्याणकारी की बात कही गई है उसे फुलफिल करें, और यदि इसे फुलफिल किया जाता है तो सीधी सी बात है कि भीख मांगने की जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बात कही है बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और इसे आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए। हो सकता है कि आंसर राइटिंग में, खासकर मेन एग्जामिनेशन के आंसर राइटिंग में, यह आपके काम आए, और चूंकि नेक्स्ट वीक में इंटरव्यू जब शुरू हो जाएंगे तो वहाँ भी इसका रोल हो सकता है। हो सकता है कि इंटरव्यू में इस पर आपकी टिप्पणी पूछ ली जाए, आपके विचार वे जानना चाहेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ दो खबरें थी। अब मैं आता हूँ आज के मुख्य विषय पर। आज के मुख्य विषय में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि किस तरीके से जो आपका पूरा सिलेबस है, उस सिलेबस में जितने भी अध्याय हैं उनको आप किस तरह से डिवाइड करेंगे। इससे पहले जब मैंने इसी विषय पर बात की थी तो आपको मैंने बताया था, मैं यहाँ फिर से बताना चाहूँगा कि जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट की पुस्तक लेते हैं तो बकायदे आपको उसमें से जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें पढ़ लेना चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि सिविल सर्विस को लेकर के सीधे सीधे जरूरी किताबें मिलनी बहुत मुश्किल हैं, लेकिन कुछ विषयों पर मिल भी जाती हैं। फर्स्ट रीडिंग में आप कुछ मत छोड़िए। बेहतर होगा कि आप अपने दिमाग में मत लाइए कि ये सिलेबस में है नहीं है, एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा। मैंने बताया था उसका कारण है, क्योंकि यदि आप उसमें से कुछ भी छोड़ देंगे तो वो लिंक वहाँ टूट जाएगी और फिर विषय को समझने में आगे चल करके आपको दिक्कत हो सकती है। तो एक बार तो आप पूरी तरह से पढ़ जाइए। एक बार पढ़ने के बाद आपके दिमाग का कैनवास बन गया। अब आपको चाहिए कि आप बकायदे जो भी आपके टॉपिक्स हैं सिलेबस से मैच करते हुए, अब आपको अपने सिलेबस को समझना पड़ेगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट, ऑनलाइन क्लासेज, ये सब आपको सिलेबस बताती है। अगर वो सिलेबस सही तरीके से नहीं बताएंगे तो आप मान करके चलिए फिर से भटकने की आशंकाएं पैदा हो जाएंगी। तो सिलेबस आपके पास बहुत क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज आप ये बताइए मुझे कि जब सड़क ही नहीं मालूम होगी तो आप डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे कैसे? और सिलेबस क्या है? सिलेबस बेसिकली वह मार्ग है जिस पर आपको चलना होता है। तो अपने सिलेबस को रखिए, और सिलेबस को सामने रखने के बाद उन्हें मूलतः तीन भागों में विभाजित कर दीजिए। मैं चार भागों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मूलतः तीन भागों की बात कर रहा हूँ। और अगर आप चार भागों में रखना चाहें तो एक भाग आप पूरा कर चुके हैं, यानी कि जब आप किताब पूरी तरह से पढ़ रहे थे तो उसे आप फर्स्ट स्टेज का मानिए, और अब जिन्हें वर्गीकरण में आप नहीं ला रहे हैं उन्हें आप चौथे का हिस्सा मान लीजिए। अब पूरा का पूरा जो सिलेबस है या जो पूरे अध्याय जो आपके पास है, जो चैप्टर है, यहाँ तक कि चैप्टर के सब चैप्टर्स भी हो सकते हैं, उन्हें आप तीन मुख्य भागों में डिवाइड कीजिए। आपको करना चाहिए, उसका जो पहला भाग होगा वो होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स यानी कि ऐसे चैप्टर्स जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि पूछे ही पूछे जाते हैं, इसका मतलब नहीं कि हर साल पूछे जाते हैं, अगर अल्टरनेटिव ईयर्स में भी पूछे जा रहे हैं तो एक बहुत बड़ी बात है। उदाहरण के तौर पर, जैसे आप सिलेबस तो जानते ही हैं, फिर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए। अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो आप देखिए कि प्रीएम्बल्स से प्रश्न आते हैं, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, इनसे प्रश्न आते ही आते हैं। जो हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उससे आते हैं, जो हमारी संघीय व्यवस्था है उससे आते हैं, जो न्यायिक सक्रियता है उससे प्रश्न आते हैं। आप उठा करके देख लीजिए, ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिनसे प्रश्न आते ही हैं। सोशियोलॉजी में आप उठा करके देख लीजिए तो महिला सशक्तिकरण पर प्रश्न आता ही आता है। अगर आप ज्योग्राफी उठा करके देखेंगे तो पता लगेगा आपको भूकंप या ज्वालामुखी या हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, जैसे बाढ़ आ गई, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पत्थर गिर रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है, इनसे प्रश्न आते ही आते हैं। तो जिनसे एक दो साल में प्रश्न आते ही आते हैं उन्हें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मान लेना चाहिए। सीधी सी बात है कि जिन्हें आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान लेंगे उसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो दूसरा लेवल जो होगा या दूसरा जो वर्ग होगा वो होगा इम्पॉर्टेंट टॉपिक का। यहाँ से मोस्ट शब्द हट गया है, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि एक दो साल में आते ही आते हैं, लेकिन फिर भी ये इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं, तो ज्योग्राफी में आप देखें कि फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, और उसमें फिर आप पाएंगे कि पूर्वी घाट और पश्चिम घाट, ये सब पॉइंट हो गया। पूर्वी घाट और पश्चिम घाट को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए, उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से सेकंड जो वर्गीकरण होगा, वर्ग होगा, वह इम्पॉर्टेंट टॉपिक का होगा, और जो तीसरा वर्गीकरण होगा वह होगा सामान्य के अंतर्गत, जनरल के अंतर्गत। आप इन्हें भी छोड़ नहीं सकते। याद रखिए कि मैंने जो तीनों बताए हैं, तो सामान्य का मतलब ये नहीं कि आप इसे छोड़ दीजिए, बस ये आपके पढ़ने के लेवल को निर्धारित करेंगे, दैट्स ऑल, उससे अधिक और कुछ भी नहीं। पढ़ने के लेवल को जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उन्हें आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उन्हें आप बार बार रिवाइज करेंगे। अगर आपकी आदत नोट्स बनाकर पढ़ने की है, तो आप बाकायदे नोट्स बनाएंगे, अच्छे तरीके से आप उन्हें तैयार करेंगे। इम्पॉर्टेंट को भी तैयार ठीक ठाक तरीके से ही करेंगे, लेकिन उतना ध्यान नहीं देंगे, उतनी मेहनत नहीं करेंगे जितना कि आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट के लिए कर रहे थे। और जो सामान्य के अंतर्गत हैं, उन्हें आप सामान्य तरीके से पढ़ेंगे कि अगर एग्जामिनेशन में आता है तो आप लिख कर आ सके। तो दोस्तों, इस तरीके से क्या क्या पढ़ें और कितना पढ़ें के अंतर्गत आपको चाहिए कि आप अपने चैप्टर्स को तीन भागों में डिवाइड कर लें, और उसके आधार पर ही आप उन चैप्टर्स के साथ व्यवहार करें। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, जयप्रकाश चौहान जशपुर नगर छत्तीसगढ़ से, रिंकी प्रजापति और खुशबू प्रजापति जौनपुर उत्तर प्रदेश से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।